हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, माला करो, तो वो कहते हैं कि हमारे अपने कुल देवता हैं, हम उनको मानते हैं, हमें उन्हीं की भक्ति करनी है। अगर हम उनको छोड़ देंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो वो तो हमसे नाराज हो जाएंगे, क्या ऐसा होता है? अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। कम से कम हमारी ये जो आजकल सनातन धर्म ने जो हिंदू धर्म बनकर विभिन्न ब्रांचेस निकाली है ना धर्म की, उसमें तो हर एक व्यक्ति का यही प्रश्न होता है कि हम किसकी भक्ति करें, अपने कुल गुरु की भक्ति करें, कुल देवता की भक्ति करें, 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक की भक्ति करें या सबको मिलकर प्रसन्न करने की कोशिश करें। अत्यंत ही सुंदर आपका प्रश्न है और मेरा हृदय से मैं चाहती थी कि ऐसा प्रश्न आए और मैं चाहती हूँ कि भगवान और गुरु महाराज मुझ पर ये कृपा करें कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 22 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि कहते हैं वस्त्रों को, भगवान कहते हैं जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इसका मतलब है भगवान बता रहे हैं कि आप वास्तव में आत्मा हो और शरीर तो वस्त्र के समान है। अब जो आप कुल देवी या कुल देवता की बात कर रहे हैं वो तो आपके इस शरीर का है, आज आप इस कुल में पैदा हुए हो तो आपका कोई और कुलदेव है, कल आप दूसरे कुल में पैदा होंगे तो कल के कोई और कुलदेवता होगा, कल किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लेंगे तो वहाँ पर तो कोई कुलदेव ही नहीं होता, हो सकता है कभी कुत्ता गधा सुअर या फिर गटर का कीड़ा बना दिया जाए तो फिर वहाँ पर तो भक्ति का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। इसका मतलब है कि हमारे इस शरीर के साथ जो रिलेटेड देवी देवता होते हैं या जो कुलदेव इत्यादि होते हैं उनका हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आत्मा भगवान का अंश है और हमारे जीवन का मकसद आत्मा को संतुष्ट करना है। कुलदेवी कुल देवता इन सबको प्रसन्न करते 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 हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देखो एक बात गौर से सुनो, ये जिंदगी एक सफर है और सफर तभी खत्म होता है जब हम रास्ता सही चुने। अगर आप एक कहीं पर जाना चाहते हो और आप निकलते हो एक ना बड़े से जो बहुत बड़ा एक रोड होता है उससे निकलते हो, फिर सोचते हो थोड़ा मैं इस तरफ चल देता हूँ, फिर एक एक साइड पे मतलब वन साइड आप चले जाते हो, फिर थोड़ा उधर से वापस रिटर्न करते हो कि नहीं थोड़ा मैं उस तरफ चला जाता हूँ, फिर दूसरे मोड़ पे चले जाते हो, फिर थोड़ा उधर जाते हो, फिर थोड़ा उधर जाते हो, थोड़ा उधर मतलब फिर वापस सोचते हो नहीं नहीं यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो, रास्ता बदल रहे हो, तो कभी भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ ये भी जानना है कि सही रास्ता भी होना चाहिए, यानी रास्ते बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक रास्ता सही होता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। समझ में आ रही है बात? जिस प्रकार समझो अगर आपको पानी का कुआं खोदना है तो आप सोचो कि मैं 5 फीट इधर यहाँ से जमीन 5 फीट खोदती हूँ, वहां से भी जमीन 5 फीट खोदती हूँ, वहां से भी 5 फीट खोदती हूँ, इस तरह से 10 जगह पर 5-5 फीट की अगर आप जमीन खोदते हो तो फिर पानी नहीं निकलेगा। पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ 50 फीट की जमीन को खोदना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से जीवन का लक्ष्य है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, भौतिक दुखों से छुटकारा और अपने देह को, ये जो हमें मनुष्य देह मिला है उस जन्म को सफल करना। तो ये अलग अलग रास्तों में जाने से, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग कुल देवी कुल देवताओं, अलग अलग देवताओं को पूजने से वो लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लक्ष्य ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हम अपने समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। देखो, शास्त्र से हमें ये जानना है कि हम किसकी पूजा करें, किसकी भक्ति ना करें। भागवतम कहती है कि एते चंद सकला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी जितने भी अवतार हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश और कला हैं, परंतु भगवान तो केवल श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 8 में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ, यही जानकर मेरी पूजा करो। यानी हमें ये जानना है कि जितने भी भौतिक जगत हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र रुद्र 33 करोड़ देवी देवता, सारे कुलगुरु सारे कुलदेव जितने भी हैं, उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 31 एंड वर्स नंबर 14 में कहा गया है, यथा तरो मूल निशीचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा हणमच्युते च। यथा तरो मूल निशीचनेन, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जब पानी डालते हैं तो उनके सारे वृक्ष के पत्ते फल टहनिया तना जड़ हर चीज तृप्त हो जाती, उसी प्रकार जब हम आमाशय में भोजन डालते हैं, यानी पेट में जब खाना आता है, तो हमारी सारी इंद्रियों को कंप्लेन नहीं रह जाती, कि उंगलियां कभी बोलती हैं कि हमें तो खाना नहीं खिलाया, आंख कभी कंप्लेन करती हैं कि सारा खाना तो पेट खा जाता है, नहीं ना। उसी प्रकार तथैव सर्वार हणम अच्युतेज, उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता, सारे कुलगुरु, सारे जितने भी ऋषि मुनि जो भी है, मतलब जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हो, 33 करोड़ देवी देवताएं जो सारी दिशाएं हैं, जो सब कोई है, वो सब तृप्त हो जाते हैं, किसी को कोई कंप्लेन नहीं रहती। आपका प्रश्न है ना कि क्या फिर वो हमसे कंप्लेन करते हैं या फिर हमसे नाराज हो जाते, नहीं, भगवान की भक्ति करने से कोई भी नाराज नहीं होते, बल्कि वो सब आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सही रास्ते पर आए। कुल गुरु का क्या मतलब है, कुल देव का क्या मतलब होता है, जो सारे कुल का हित चाहे, और वो जानता है कि आपके कुल का हित केवल इसी में है कि आप भगवान की भक्ति करो। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो उससे आपका कभी अहित नहीं होता, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो अगर ऐसा है भी, जैसे माया इतनी भ्रमित करने वाली है, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को बोला कि आपको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंद्रदेव की पूजा करते थे, बोले इसकी पूजा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है, तो इंद्र बहुत कोपित हो गया था, गुस्सा किया था उसने बहुत, क्योंकि भगवान की माया जो है वो बड़े बड़े देवताओं को भी भ्रम में डाल देती है। लेकिन उस समय भगवान ने ये साबित किया कि समस्त देवताओं का राजा भी यदि आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवों की पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आके हमें बचाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, लेकिन हिरण्यकश्यपु को जब नरसिंहदेव भगवान फाड़ रहे थे, उसके पेट में से अंतरियां निकाल रहे थे, उसको मार रहे थे, उस टाइम पर नाखूनों से चीर रहे थे, ब्रह्मा जी ने आके नहीं बचाया कि देखो विष्णु भगवान आप इसको मारो नहीं, ये मेरा भक्त है, 35,000 साल तक इसने मेरी तपस्या की, बोला नहीं। रावण शिव जी का इतना पक्का भक्त था कि हजारों दफा अपना सिर काट काट कर शिव जी के चरणों में चढ़ाया, लेकिन जब श्री राम रावण को मार रहे थे तब शिव जी ने आके नहीं कहा कि खबरदार मेरे भक्त को नहीं मारना, ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है, बचाया नहीं, मारने दिया। यानी कि देवी देवताओं को या कुल देवताओं को कोई भी आपसे सरोकार नहीं होता है, वो आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं, उसके बदले में आपको सुख संपत्ति दे देते हैं। लेकिन आज तक किसी भी भगवान के भक्त को किसी देवता ने कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई, ना ही वो पहुंचा सकता है। जैसे सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर भगवान की पूजा की, तो इंद्र ने भले उनको मारने की कितनी कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनको मरने नहीं दिया, भगवान ने एक बाल भी बांका होने नहीं दिया, पूरे ब्रज की रक्षा की। द्रौपदी ने सारे सहारों को छोड़कर कृष्ण का सहारा लिया, भगवान ने उसकी लाज रखी। चाहे प्रहलाद हो, प्रहलाद का पिता कितना बड़ा असुर था, वो अपने आप को भगवान कहता था, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में था। भले उसके पिताजी ने कितनी बार उसको मारवाने की कोशिश की, कभी कढ़ाई में पकवाया, कभी वृक्षों से, कभी कभी बहुत बड़े बड़े पर्वतों से उसको गिरवाया, और बहुत बहुत कष्ट देने का, बहुत 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 कष्ट देने का उसे प्रयास किया, लेकिन भगवान ने हर समय बचाया उसे। तो हमें अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है श्रद्धा। इस बात पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हर संकट से हमारी रक्षा करेंगे, और वो करेंगे, करके दिखाया। इतिहास में करोड़ों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भगवान के ऊपर भरोसा तो करें, विश्वास तो करें। भगवान कहते हैं 18.66 में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, तुम सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, केवल माम एकम। भगवान ने साफ साफ कहा है, देखो मेरी शरण में आए हो तो खबरदार किसी और का आसरा मत रखना, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, और अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, जितने भी अपराध लगेंगे ना तुमको कुल देवता की भक्ति ना करने से, देवी देवताओं की भक्ति ना करने से, या जो भी धर्म आपने नहीं निभाए हैं उनका जो भी अपराध लगेगा ना, मैं बैठा हूँ, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षे ही श्यामी मासुच, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें समस्त अपराधों से मुक्त कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ। देखो भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, और जिस प्रकार एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, उसी प्रकार एक हृदय में दो प्रेमी भी नहीं बिठाए जा सकते। हम भगवान के अतिरिक्त किसी और को सरेंडर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सारे देवी देवताओं का, बाकी सारे कुल देवताओं का अपमान करते फिरे, नहीं, वो है अपनी जगह पे, उन महान है, उन्होंने इतनी तपस्या की है कि उनको कुल देवी, कुल देवता या फिर देवी देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको प्रणाम है, लेकिन उनसे आशीर्वाद क्या लेना है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कृष्ण की भक्ति कर सकूं, और बस कुछ नहीं, मेरा पूरा हृदय, मेरा पूरा, हमारे पास इतना समय कहाँ होता है कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक दिन पीर के दिन शिव जी को पूजें, मंगल के दिन गणपति को पूजें, और दूसरे सैटरडे के दिन शनि को पूजें, इस दिन उसको पूजें, संतोषी को पूजें, और साईं बाबा को पूजें, हर इतनी सारी देवी देवताओं को क्या क्या। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना भी बहुत आसान है, उसमें ना आपको बड़े बड़े उपवास रखने हैं, ना ही आपको ये दिन वो करना है, वो दिन वो करना, नहीं, बस आपको चार नियम का पालन करना है, नशा नहीं करना है, गोश्त नहीं खाना है, और शराब नहीं पीना है, और पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करना, ये चार नियम का पालन करना है, और नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। इसमें उपवास केवल एकादशी के दिन हमें करना है, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हम जितना अच्छे तरीके से संभव हो हमें उपवास रखना है, बाकी दिनों में ये दिन ये उपवास रखो, वो दिन ये नहीं रखना है, बस हमें सबको प्रणाम है, लेकिन हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे भगवान को संतुष्टि होती है। तो फिर एकादशी का उपवास रखना है, और जो विष्णु तत्व के या जो शुद्ध वैष्णव के दिन होते हैं ना, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्थी है, उसके दिन उपवास रखना होता है बस, और बाकी कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं। ये कलयुग इतना भयानक है कि इसमें हम सबको प्रसन्न कर नहीं सकते, देवी देवताओं को नहीं कर सकते, इतना समय नहीं हमारे पास। लेकिन यदि हम इतना भी केवल अगर सिंसियरली करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो भगवान अवश्य हमारा साथ देते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भगवान फौरन हल कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को नहीं फैलाना चाहिए, दुनिया को ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, बल्कि प्रॉब्लम्स को ये बताना चाहिए कि मेरे पास इतना महान कृष्ण है कि उसकी शरण में आने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं होती है। मेरा कृष्ण महान है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है कृष्ण के सामने। कृष्ण के खाली नाम लेने से, शास्त्र कहता है कि नाम नो ही यावती शक्ति पाप नरहरणे हरि तावत् कर्तुं न शक्तोऽपि पातकं पातकी नरः। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी महामंत्र का जो जप करता है उसके अंदर इतना पावर है कि वो आपके इतने अपराधों को नष्ट कर सकता है जितने अपराध के आप कर भी नहीं सकते। और जब अपराध ही नहीं होंगे तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि आपको दंड दे सके। आशा आपको समझ में आया होगा।